ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। गन्ना किसानों को भुगतान के लिए शेष 52 करोड़ रुपए तत्काल उपलब्ध कराने का सरकार का निर्णय। आधारभूत तय से ही पाठ्यक्रम में गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। एक साल की अवधि में सरकार अपने उद्देश्यों के हिसाब से ही आगे बढ़ रही है, सरकार की प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा का कथन। और लीबिया से यूरोप जा रही नाव के डूबने से 60 से अधिक प्रवासियों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने गन्ना किसानों को भुगतान के लिए शेष 52 करोड़ रुपए तत्काल उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री के प्रेस संयोजक सूर्य किरण शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड की मौजूदगी में आज संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों की बैठक में गन्ना किसानों को बकाया भुगतान तुरंत उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड ने मंत्रियों और सचिवों को उत्पादोन्मुख नीतियां, योजनाएं और कार्यक्रम बनाने तथा कृषि क्षेत्र और किसानों को प्राथमिकता देते हुए उनके क्रियान्वयन में तत्परता दिखाने का निर्देश किया। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा है कि देश को एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो वैश्वीकरण के बहुमुखी दबाव को झेल सके। मोहतर के गौरी डाड़ा स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि 21वीं सदी के डिजिटल युग में नेपाल जैसे विकासशील देश वैश्वीकरण के बहुआयामिक दबाव में है, और उन्होंने कहा कि आधारभूत तय से ही पाठ्यक्रम में युग सापेक्ष गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि संविधान के प्रावधानों और नवीनतम स्थिति को देखते हुए शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन देश के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि शिक्षा विधेयक को संसद से पारित कर जल्द ही लागू करने के लिए वे प्रतिबद्ध हैं। एक अन्य संदर्भ में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि उन्होंने संबंधित निकाय को एनसेल के मामले की जांच करने का निर्देश किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा है कि मंत्री फेरबदल की तत्काल कोई संभावना नहीं है। बीते मार्गशीर्ष 28 गते मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री शर्मा ने कहा कि मंत्री फेरबदल को लेकर गठबंधन और राजनीतिक दल के बीच कोई चर्चा नहीं हुई है, जैसी कि बाहर अफवाह थी। मंत्री शर्मा ने यह भी कहा कि स्थानीय कृषि उपज को उचित बाजार और कीमत नहीं मिलती है और कुछ कृषि उत्पादकों को ऊंचे दामों पर खरीदना पड़ता है। इसी तरह की स्थिति से नीतिगत और व्यावहारिक रास्ता निकालने के प्रति सरकार सजग है। मंत्री शर्मा ने कहा है कि सरकार ने एक साल में अपनी लय नहीं खोई है और अपने उद्देश्यों के अनुरूप आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समृद्धि, सुशासन और सेवा वितरण को सुगम बनाना है और वो इस पर काम कर रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में बिजली की खपत वृद्धि एवं खनिज ईंधन की कटौती, नदी एवं जल आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति एवं हाथ हथियारों का खर खजाना नियमावली 12वां संशोधन 2080 को मंजूरी देने लगात निर्णय किए गए। इसी तरह राष्ट्रीय बृहद जलाधार प्रबंधन रणनीति को मंजूरी देने, नेपाल पर राष्ट्र सेवा के समूहीकरण के लिए राजपत्रांकित विशेष श्रेणी के रिक्त पद पर सह सचिव सेवा लम्साल को पदोन्नत करने का भी निर्णय किया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। सुप्रीम कोर्ट के 6 प्रस्तावित उम्मीदवारों में से 2 पर आज संसदीय सुनवाई हुई है। उच्च अदालत के न्यायाधीश द्वय महेश शर्मा पौडेल और टेक प्रसाद ढुंगाना ने संघीय संसदीय सुनवाई समिति के समक्ष अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की। यह स्वीकार करते हुए कि न्याय धीमा और महंगा है, उन्होंने संविधान की सुरक्षा और संवैधानिक नैतिकता को मजबूत करने, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की समीक्षा करने और पांचवी रणनीति योजना के निर्माण और इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। चुनाव आयोग ने आगामी माघ 11 गते को होने वाले राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनाव के लिए पंजीकृत 12 राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देकर क्रम तय किया है। आयोग के प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौड़ेल ने बताया कि 2079 की प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुनाव में समानुपातिक चुनाव प्रणाली के लिए प्राप्त मतों के आधार पर यह क्रम निर्धारित कर चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करने के साथ ही पूछ 4 गते स्वीकृत दल की नामावली नेपाल राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए नेपालियों के शवों को स्वदेश लाने की व्यवस्था करने का सरकार से अनुरोध किया है। आयोग के प्रवक्ता डॉ टीकाराम पोखरेल द्वारा आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सरकार से ऐसा आग्रह किया गया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा ने कहा है कि विकास और समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने के समय में देश अभी भी राजनीतिक एजेंडे में फंसा हुआ है। गोरखापत्र संस्थान के प्रकाशन द राइजिंग नेपाल की 98वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मंत्री शर्मा ने कहा कि भविष्य का मुद्दा विकास और समृद्धि पर केंद्रित होना चाहिए। मंत्री शर्मा ने आगे कहा कि मीडिया को भी जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। जनकपुर धाम में श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव बड़े ही धूमधाम और भक्तिभाव से मनाया जा रहा है। पूजा अर्चना के लिए सुबह 3 बजे से ही भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब जनकपुर धाम उप महानगरपालिका क्षेत्र मानव सागर से भर गया है। भारत नेपाल से लाखों श्रद्धालु जनकपुर धाम में इस मान्यता के साथ आए हैं कि इस दिन पूजा करने से विशेष फल मिलता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि के दिन त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान राम और मिथिला के राजा जनक की बेटी सीता का विवाह आज मनाया गया था। विवाह पंचमी उत्सव में भगवान श्री राम और माता सीता के प्रतीकात्मक विवाह की परंपरा है, जो हर साल एक सप्ताह तक मनाया जाता है। त्रेता युग में राम और सीता का शुभ विवाह प्राचीन मिथिला की राजधानी जनकपुर में हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। लीबिया के तट पर हुई एक जहाज दुर्घटना में 60 से अधिक प्रवासियों के डूबने की खबर है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन ने जिंदा बचे लोगों का हवाला देते हुए शनिवार को बताया कि ये जहाज लगभग 86 लोगों को लेकर लीबिया के तटीय शहर जुआरा से रवाना हुआ था। खबर के अनुसार समुद्र की ऊंची लहरों की चपेट में नाव के आ जाने से बच्चों समेत 60 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। माना जा रहा है कि वो सभी मर गए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गन्ना किसानों को भुगतान के लिए शेष 52 करोड़ रुपए तत्काल उपलब्ध कराने का सरकार का निर्णय आधारभूत तय से ही पाठ्यक्रम में गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक है, प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड का कथन। एक साल की अवधि में सरकार अपने उद्देश्यों के हिसाब से ही आगे बढ़ रही है, सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा का कथन। और लीबिया से यूरोप जा रही नाव के डूबने से 60 से अधिक प्रवासियों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।